रिवांश की लाल आंखें और होठों पर लगा ताज़ा खून देखकर आकांक्षा सच समझते देर नहीं लगी। फिर सबूत के तौर पर नीचे उस आदमी की लाश भी तो पड़ी थी। उसकी सच्चाई जानकर वो डरकर पीछे हो गई। तो ये है तुम्हारी सच्चाई? क्या कहा था तुमने कि तुम भी रास्ता भटक गए हो? ये तो अच्छा हुआ कि मुझे वहां पर एक टॉर्च गिरा हुआ मिला, जो कि शायद तुम्हारे ही किसी शिकार का गिरा होगा। तुम ही हो ना वो राजकुमार रिवांश? इतने सालों तक जंगल से जो लाशें मिलती हैं उन सबको तुमने ही मारा है। तुम इतने मासूमों की जान ऐसे कैसे ले सकते हो? शायद लोग सच ही कहते हैं तुम्हारे बारे में कि तुमने शक्तियां पाने के लिए शैतानी प्रक्रियाएं अपनी मर्जी से की थीं। डरते हुए भी आकांक्षा ने अपनी सारी बातें उसके सामने रख दी थीं। रिवांश सामान्य रूप में वापस आ गया था ताकि आकांक्षा को उससे डर ना लगे। आप हमें गलत समझ रही हैं शहजादी, आकांक्षा ने गुस्से में जवाब दिया। मैं क्या गलत समझ रही हूँ, बल्कि अभी सही समझाए तुम्हें। मुझे पता है तुम मुझे भी मार दोगे ना। हम आपको कभी नहीं मार सकते हैं। अगर मारना होता तो अब तक मार चुके होते। हमें तो आपको देखते ही आपसे प्यार, आकांक्षा ने बात को काटते हुए कहा। एक शैतान कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता। वो जानता है तो सिर्फ किसी की जान लेना। वो वहां से दूर जाने लगी। और मेरे पीछे मत आना। हाँ, अगर मारना ही है तो यहीं पर मार दो, तुम्हें तो ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। रिवांश ने दुखी होकर जवाब दिया। हम आपको क्यों मारेंगे? हमने बताया ना कि आपको देखते ही आपसे प्यार हो गया था। आप बहुत मासूम हैं, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह। हम पूरे दिन से आपकी एक एक बात पूरे ध्यान से सुन रहे हैं। प्लीज एंजल, आप ऐसे अकेले आके मत जाइए। इस जंगल में बहुत खतरा है आपके लिए। आकांक्षा उससे थोड़ा दूर पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके कानों में उसकी आवाज एकदम स्पष्ट सुनाई दे रही थी। वो दूर से चिल्लाते हुए बोली, और सबसे बड़ा खतरा तुमसे ही है। मेरे पीछे मत आना तुम। जैसी आपकी मर्जी, अब आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। हम आपको जंगल में अकेले नहीं भटकने दे सकते। हम आपसे प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ के बाकी पिशाच नहीं। उन्होंने आपको देख लिया तो एक मिनट नहीं चलेगा आपका शिकार करने में। आकांक्षा उसकी बातों को अनसुना करते हुए चल रही थी, जबकि बाकी पिशाचों का ख्याल आते ही रिवांश वहां से चला गया और उसी वक्त जंगल के पिशाचों को एक जगह पर इकट्ठा किया। पिशाचों का नेतृत्व करते हुए सबसे बुजुर्ग पिशाच जीवन ने पूछा, युवराज, आपने ऐसे हम सबको यहाँ एक साथ क्यों बुलाया? क्या फिर कोई संकट आन पड़ा है? उन दुष्टों को तो हमने कैद कर लिया था ना? क्या बॉस, अपुन अभी चक किसी लड़की को पटाने का प्लान बना रहा था, तुमने बीच में डिस्टर्ब कर डाला, एक दूसरा पिशाच बोला। उसकी बात काटकर बिनॉय, जो कि उम्र में ज्यादा बड़ा नहीं था परंतु फिर भी काफी समझदार था, ने कहा। की होलो राजकुमार, क्या वो चारों फिर से आजाद हो गए क्या? उन्होंने फिर से आपको परेशान करने की कोशिश की? रिवांश ने उन सबको चुप करवाते हुए बोला, चुप हो जाइए आप सारे, कोई हमें बोलने का मौका नहीं दे रहा। सुबह से वो कुछ बोलने नहीं दे रही और अब आप सारे भी शुरू हो गए। वो कौन युवराज? जीवन ने पूछा। जंगल में कल रात को एक लड़की गलती से आ गई थी। शायद उसके पास कुछ अच्छी शक्तियां हैं। तभी जब वो आई तो उसके चारों तरफ से एक अद्भुत रोशनी का घेरा था। शायद इसी वजह से हम उसकी तरफ खींचे चले गए। हमने बहुत कोशिश की कि उन्हें पता न चले कि हम कौन हैं, बोलते हुए रिवांश का चेहरा उतर गया। लेकिन उन्हें पता चल गया कि हम एक सामान्य इंसान नहीं हैं और वो गुस्सा करके यहाँ से चली गई हैं। हम नहीं चाहते कि आप में से कोई भी उनका शिकार करे। अरे बॉस, हम क्यों तुम्हारे शिकार पर हाथ डालेगा? तुम बिंदास होकर उसका खून पीना और पार्टी करना आज रात, मोहित ने आदतन फिर बीच में बोला। तो जीवन ने उसे डांटा, मोहित तू अपना मुंह बंद रख। अगर युवराज को उनका शिकार करना होता तो अब तक जिंदा नहीं होती वो लड़की। वो उनका शिकार नहीं करना चाहते, बल्कि उन्हें बचाना चाहते हैं। अब ऐसा क्यों है ये तो वो खुद ही बेहतर जानते हैं। पता नहीं दादा ऐसा क्यों है, लेकिन वो हमसे नाराज होकर चली गई हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कल सुबह तक उन्हें वापस जंगल से बाहर भेज दें। बस तब तक आप सब उनसे दूर रहिएगा। याद रखिएगा कि उन्हें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। लगता है बॉस आपको भी प्यार हो गया है, मोहित फिर बड़बड़ाया। उसकी बात सुनकर सारे पिशाच उसकी तरफ देखने लगे, जबकि रिवांश मुस्कुराते हुए वहां से आकांक्षा की तरफ जाने लगा। अगले ही पॉप हटने से पहले राज पुरोहित जी पूजा संपन्न करवाकर वापस मंदिर में लौट चुके थे। उनके लौटने की खबर सुनकर जानवी और राजवीर जी तुरंत उनसे मिलने के लिए उनके कक्ष में गए। प्रणाम राजपुरोहित जी। राजपुरोहित जी को देखते ही राजवीर जी ने आदरपूर्वक अपने दोनों जोड़ लिए। पहचाना आपने मुझे? हम वो, शांत हो जाइए श्रीमान, जिसे हम मिल चुके होते हैं उन्हें हम कभी नहीं भूलते। आज आपका मन इतना अशांत क्यों है? राजपुरोहित जी शांतचित से जवाब दिया। राजवीर जी जानवी के साथ उनके समक्ष बैठ गए। प्रणाम राजपुरोहित जी, जानवी ने वहां बैठने से पहले बोला। खुश रहो बेटी, राजपुरोहित जी ने जानवी को आशीर्वाद देते हुए कहा। ये तो आपकी पोती नहीं लग रही है? उनकी बात सुनकर राजवीर जी ने हैरानी से उनकी तरफ देखा और कहा, आपको कैसे पता कि आकांक्षा नहीं है? मैंने कहा था ना, हर इंसान अपने एक लक्ष्य को लेकर पैदा होता है और ना चाहते हुए भी ऊपर वाला उसे उस लक्ष्य के करीब पहुंचा ही देता है। लगता है आपकी पोती आकांक्षा अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गई है, तभी उसकी चिंता आपको इतने सालों बाद यहाँ मेरे पास खींच लाई। राजवीर जी और जानवी हैरानी से राजपुरोहित ने की तरफ देखने लगे। उन्होंने अभी तक उन्हें कुछ नहीं बताया था, उसके बावजूद राजपुरोहित जी ने परिस्थिति को सटीक पहचान लिया था। उनके सवालिया चेहरे को देखकर राजपुरोहित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हैरान मत होइए श्रीमान, हम भी आप ही की तरह एक सामान्य इंसान हैं। आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें आपके मन की अशांति का इशारा कर रही हैं। अब बताइए कि क्या हुआ? मेरी अक्षु शिमला से आगे वाले जंगल में पहुंच गई है। लोग कहते हैं वो जंगल शापित है और वहां पर पिशाचों का डेरा है, राजवीर जी ने नम आंखों से कहा। राजपुरोहित जी, मेरी बच्ची को बचा लीजिए, वो मेरा इकलौता सहारा है। जिस जगह स्वयं शैतान की परछाई पड़ी हो, वो धरती पवित्र हो भी कैसे सकती है? लगता है आपकी पोती का जन्म धरती माँ को उस बोझ से छुटकारा दिलाने के लिए हुआ है जो वो सदियों से सह रही है। मेरी बच्ची की जान को कोई खतरा तो नहीं है ना राजपुरोहित जी? आपके चेहरे पर चिंता का नहीं गर्व का भाव होना चाहिए कि ऊपर वाले ने आपकी पोती को एक विशिष्ट कार्य के लिए चुना है। जिस कुदरत ने उसे शक्तियाँ दी हैं, वही उसकी हर पल रक्षा भी करती है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आकांक्षा को कुछ नहीं होगा। पर जंगल में पिशाच, जानवी ने धीमी आवाज में कहा। जरूरी नहीं होता कि सभी बुरी शक्तियाँ बुरी ही हों, कई बार बुराई में भी अच्छाई छुपी हो सकती है, और उन्हीं बुराई में कुछ अच्छाई भी है जो अनजाने में शैतान के गुलाम बन गई है। राजपुरोहित ने उसकी शंका को दूर किया। आपके कहने का मतलब है कि उन पिशाचों में कुछ अच्छी पिशाच भी हैं जो कि अक्षु की रक्षा करेंगे? तब तो अक्षु को कोई खतरा नहीं होगा ना, जानवी ने पूछा। राजपुरोहित जी, हाँ आशा तो यही है, लेकिन कहते हैं कि उस जंगल से कोई भी जिंदा वापस नहीं आ पाया है। बुराई को अच्छाई पर हावी होते देर भी नहीं लगती। ऐसे में आकांक्षा को अपनी शक्तियों को पहचान कर बुराई का सामना करना होगा। लेकिन मेरी बच्ची अकेले उन पिशाचों से कैसे लड़ेगी? राजवीर ने हैरानी से कहा। उसे तो अपनी शक्तियों का पूर्णतया आभास भी नहीं। उनकी बात सुनकर राजपुरोहित जी ने कुछ देर आंख बंद करके सोचा और फिर कहा, आप लोग तैयार होकर मंदिर के प्रांगण में पहुंचे, हम वहां देवी माँ से प्रार्थना करेंगे और आकांक्षा की मदद करने की कोशिश भी। कल सूरज की पहली किरण निकलने के पहले भोर में एक विशेष बड़ी पूजा करेंगे, बाकी आपको पंडित जी सब समझा देंगे।
राजपुरोहित जी के कहे अनुसार जानवी और राजवीर जी मंदिर के प्रांगण में तैयार होकर छोटी पूजा के लिए पहुंचे। उस पूजा में उन राजपुरोहित जी सहित एक और पंडित तथा राजवीर जी और जानवी भी सम्मिलित हुए। ये पूजा आकांक्षा की रक्षा के लिए की जा रही थी। आकांक्षा रिवांश से छिपते छिपाते जंगल में घूम रही थी, जबकि रिवांश साई की तरह उसके साथ था। रात बिताने के लिए वो पेड़ पर चढ़ गई थी। हालांकि उसे समय का कोई अंदाज़ा नहीं था, लेकिन आँख खुलते ही वो पेड़ से नीचे उतर आई थी। आकांक्षा रास्ता ढूंढते हुए खुद से बात कर रही थी। पता नहीं इस जंगल का अंतिम छोर कहाँ पर है, रात तो जैसे तैसे पेड़ के ऊपर चढ़कर बिता दी, यहाँ तो दिन में भी डर लगता है, पता नहीं टाइम भी क्या हो रहा होगा। एक तो इतनी भूख लगी है ना कि एक कदम भी नहीं चला जा रहा। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसे सुनकर वो थोड़ा डर गई। कौन? आकांक्षा ने घबराते हुए बोला। कौन है वहां पर? प्लीज मुझे मत मारना। रिवांश ने उसकी तरफ फल फेंकते हुए बोला, ये लीजिए शहजादी, आपको भूख लगी थी ना? तुम फिर से आ गए? लगता है मुझे नहीं तुम्हें भूख लगी है जो तुम मुझे मारने के लिए मेरे पीछे आए हो। रिवांश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हमें अगर आपको मारना होता तो हम आपको कब का मार चुके होते। आप हमारे पास आइए, हम आपको उठाकर जंगल से बाहर फेंक देते हैं, आपको हम सुरक्षित यहाँ से बाहर निकाल देंगे। क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैं क्यों आऊंगी तुम्हारे पास? तुम्हारा क्या भरोसा, मेरा खून पी जाओ तो? देखो मैंने लास्ट मंथ ही डॉक्टर से चेक करवाया था, मेरे अंदर तो ऐसे ही खून की कमी है, तुम्हारा तो पेट भी नहीं भरेगा। आकांक्षा वहां से तेजी से आगे बढ़ने लगी। आप हमारे सामने रहिए ना, हमारा पेट भरे या ना भरे हमारा मन खुश रहेगा। आकांक्षा ने रिवांश के फेंके हुए फल खाते हुए कहा, देखो मुझे भूख लगी है इसलिए खा रही हूँ, और यहाँ पर कोई और है भी नहीं जो मेरी मदद कर सके। इसका मतलब आप हम पर विश्वास करती हैं? डरिए मत, हमने जंगल के सभी पिशाचों को बोल दिया है कि वो आपसे दूर रहें, आपको अब कोई खतरा नहीं है। रिवांश की बात सुनकर आकांक्षा डरकर नीचे बैठ गई। क्या जंगल में और भी पिशाच हैं? हे भगवान, कहाँ फंस गई हूँ मैं? कहीं ये लोग मिलकर पार्टी ना मना ले और पता चला कि मैं निपट गई। तो क्या हम आपको फेंक दें जंगल के बाहर? आकांक्षा वहां से भागते हुए चिल्लाई, मैं बोल रही हूँ तुम मेरे पीछे मत आना। हम बता रहे हैं आप एक पिशाच से तेज नहीं दौड़ सकती शहजादी। अगले ही पल रिवांश उसके आगे खड़ा था। क्रमशः